Iran Radio Podcast.
میں موتیوں سے جڑی ہوئی مخملی قبا پہنوں گا، اپنی کمر سے ہیروں سے جڑی ہوئی تلوار باندھوں گا اور موج مستی کروں گا اور گھوڑے پر سوار ہو کر تبریز کے آس پاس کے علاقوں میں شکار کے لیے نکلوں گا۔ دوستو، دنیا کے اتہاس پر پوڈ کاسٹ کا یہ 40th ایپیسوڈ ہے ایران ریڈیو سے۔ میں ہوں احمد عباس، آپ سبھی کو میرا سلام۔ ہم کچھ چنے ہوئے اور خوبصورت جملے اور واقعے آپ کو سنا رہے تھے۔ اسی کرم میں آگے جو واقعے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ کبھی گھوڑے سے اتر کر اپنے ساتھیوں سے دور چلا جاؤں گا اور اکیلے ہی ہری بھری وادی میں چہل قدمی کروں گا۔ شاید مجھ پر پریوں کی رانی کی نظر پڑ جائے، وہ میری دیوانی ہو جائے اور مجھ سے اپنے دل کی بات کہے۔ یہ ایران کے تیسرے قاجاری شاہ کے 17 اترادھیکاری ناصر الدین مرزا کے بچپن کے سپنے تھے۔ سن 1848 میں جب محمد شاہ کا ندھن ہو گیا تو ناصر الدین مرزا کو انہی سپنوں کے ساتھ تخت پر بیٹھا دیا گیا تاکہ وہ روس اور بٹین کی چالوں سے دیش کو سرکشت رکھ سکیں۔ روس اور بٹین کے انبھوی اور مجھے ہوئے راجنیتا اپنے راجنیتک ادیشوں کو آگے بڑھانے کے لیے کئی سیاسی چالیں چلنا جانتے تھے جن سے ناصر الدین شاہ بالکل بھی اوگت نہیں تھے، لیکن قسمت نے اس یوا شاہ کا ساتھ دیا جو تبریزی شاسن میں سب سے بدھیمان اور ہوشیار شخص مرزا تقی خان فراہانی نے ان کے ساتھ تہران میں پرویش کیا۔ راجابھیشیک کے بعد شاہ نے مرزا تقی خان کو امیر کبیر کا خطاب دیا اور سبھی پرشاسنیہ کاریہ انہیں سونپ دیے۔ امیر کبیر نے دیش پر روسیوں اور انگریزوں کا ورچسو نہیں ہونے دیا۔ شروعات میں ہی انہیں مشہد میں انگریزوں کی سازش کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ سمے سے حسن خان سالار نے خراسان کو ایران سے الگ کرنے کے لیے ودروہ شروع کر رکھا تھا جو اس سمے اپنے چرم پر تھا۔ دوسری اور کیندریہ شاسن کا خراسان کے کیندر مشہد پر کوئی نینترن نہیں تھا۔ اس ودروہ کا نیتا ورشوں سے انگریزوں سے ویتن پراپت کر رہا تھا اور اب اسے امید تھی کہ انگریزوں کے سمرتھن سے ایران کا پردھان منتری بن جائے گا جو پد اس سمے مرزا تقی خان فراہانی کے پاس تھا۔ امیر کبیر خراسان میں سالار خان کی سازش کا کوئی سمادھان کھوجنے کا پریاس کر رہے تھے کہ بٹین اور روس کے راجدوت ان سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ انہوں نے سالار اور امیر کبیر کے بیچ وارتا میں مدھیستتا کا پرستاؤ رکھا، لیکن امیر کبیر کے جواب نے انہیں آشچر میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا، اگر ہمیں سالار سے لڑنا پڑے اور اس لڑائی میں 20,000 لوگوں کی جان گنوانی پڑے تو اس سے بہتر ہے کہ یورپیوں کو اپنے معاملوں میں ہستکشیپ کی انومتی دیں۔ روس اور بٹین کے راجدوت جو زمانے تک ایران کے آنترک معاملوں میں ہستکشیپ کرتے رہے تھے، یہ جواب سن کر حیران رہ گئے۔ اس ملاقات کے بعد انگلینڈ کے راجدوت نے اپنے ودیش منترالے کو لکھا۔ یہ بات سن کر امیر کبیر کے ارادے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا ادیش یہ ہے کہ ایران میں روس اور انگلینڈ کے پربھاؤ کو کم کیا جا سکے اور جنتا کے سامنے انہیں نیچا کر کے دکھایا جا سکے۔ روس کے راجدوت نے اپنے دیش کے ودیش منترالے کو لکھا، امیر کبیر مشہد کی استھتی کے بارے میں ہمیں کوئی اسپشٹیکرن نہیں دینا چاہتے ہیں اور انہیں ہمارے اور انگریزوں کے ہستکشیپ کو لے کر ڈر ہے۔ امیر کبیر خراسان میں ودروہ کو دبانے میں سفل ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں روسی اور برٹش راجدوتوں کا نیا انوروھ پراپت ہوا۔ روس اور انگلینڈ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو پہلے دیش دروہ کے آروپ میں دیش سے نکالا جا چکا ہے، انہیں اب واپس لے لیا جائے۔ روس ناصر الدین شاہ کے چچا کا سمرتھن کر رہا تھا جو سطح پر قبضہ کرنے کی اچھا رکھتے تھے، اور انگلینڈ لگاتار سالار خان کا سمرتھن کر رہا تھا۔ امیر کبیر نے ایک بار پھر دونوں راجدوتوں کے انوروھ کو رد کر دیا اور ان دونوں لوگوں کی وطن واپسی سے صاف انکار کر دیا जो विदेशी शक्तियों के इशारे पर काम कर रहे थे। वह हमेशा ही दोनों देशों के अनुरोध को ठुकरा दिया करते थे, क्योंकि अगर उनमें से किसी एक की बात को स्वीकार करते तो दूसरा अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालता। अमीर कबीर न सिर्फ रूस और इंग्लैंड से नाखुश थे, बल्कि शाही परिवार से भी खुश नहीं थे। दूसरे काजारी राजा फतेह अली शाह के लगभग 160 बच्चे थे और उनमें से प्रत्येक के कई बच्चे थे। मोहम्मद शाह और नासिरुद्दीन शाह के शासनकाल के दौरान इन सभी जवान और बूढ़े राजकुमारों को सरकार से वेतन मिलता था। जब अमीर कबीर ईरान के प्रधानमंत्री बने तो राजकुमारों के जीवन पर होने वाले भारी खर्च ने उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्हें अपनी निर्माण परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए राजकुमारों के वेतन से कटौती करनी पड़ी। अमीर कबीर दारुल फनून नामक एक स्कूल स्थापित करना चाहते थे, एक समाचार पत्र प्रकाशित करना चाहते थे, देश के विभिन्न भागों में महल बनवाना चाहते थे, सेना का आधुनिकीकरण करना चाहते थे और उसे नए हथियारों से लैस करने का इरादा रखते थे। वो देश के विभिन्न भागों में डाकखाने स्थापित करना चाहते थे और बाजारों का निर्माण करवाना चाहते थे। उनकी योजना थी कि विदेशों में ईरानी दूतावास स्थापित किए जाएं। इन सब के लिए उन्हें धन की ज़रूरत थी और इसके लिए राजकुमारों और दरबारियों के भारी वेतन में कटौती करना ज़रूरी था। राजकुमारों के वेतन में कटौती के कारण उनमें से कुछ को अजीबोगरीब काम करने पर मजबूर होना पड़ा। उदाहरण के लिए समद नामक एक राजकुमार को अधिक धन कमाने के लिए शहर के धनी लोगों के घरों में गायक के रूप में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन सभी राजकुमार और दरबारी राजकुमार समद की तरह नहीं थे। उन्होंने इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं किया और वे अमीर कबीर से बदला लेने के बारे में सोचने लगे। इन लोगों की तरह रूस और इंग्लैंड के राजदूतों को भी अमीर कबीर एक आंख नहीं भाते थे, क्योंकि अमीर कबीर ने विभिन्न तरीकों से लोगों को रूसी और ब्रिटिश सामान नहीं खरीदने और इसके बजाय ईरानी सामान का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ये रूस और इंग्लैंड के लिए एक परेशानी थी। जब अमीर कबीर ने एक कपड़े के कारखाने को खोलने का फैसला किया तो ब्रिटिश राजदूत ने उनसे मुलाकात की और कहा, कारखाना खोलने की योजना एक महंगा प्रयोग है, आपके लिए यूरोपीय कपड़ों को सस्ते दामों पर आयात करना बेहतर होगा। अमीर कबीर ने जवाब दिया, कपड़ा फैक्ट्री स्थापित करने का लाभ यह है कि ये एक ऐसी फैक्ट्री है जहां खर्च किया गया प्रत्येक डॉलर ईरान के भीतर ही रहेगा, लेकिन विदेशी कपड़ा आयात करने के लिए हमें ईरान से सोने की छड़ें बाहर भेजनी पड़ती हैं। राजदूत एक बार फिर निराश हो गया और उसने अपने देश के विदेश मंत्री को लिखा, अमीर कबीर विशेष रूप से ईरानी उद्योगों का समर्थन करने और सभी विदेशी वस्तुओं के प्रवेश को रोकने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन ये नीति किसी भी तरह से व्यापार और सभ्यता की उन्नति में योगदान नहीं करेगी। आपके विचार में ब्रिटिश राजदूत किस सभ्यता के बारे में चिंतित थे? 1266 हिजरी में एक अंग्रेज इंजीनियर ने, जिसे बाद में 19वीं सदी का महानतम इंजीनियर कहा गया, एक विशाल रेलवे योजना का प्रस्ताव रखा जो यूरोप को भारत से जोड़ती थी। इस रेल मार्ग का कुछ हिस्सा ईरान से होकर गुजरता था। ब्रिटिश विदेश सचिव ने ईरान से होकर इस रेल मार्ग के गुजरने के बारे में राजदूत की राय पूछी तो उसने जवाब दिया, रेल मार्ग की स्थापना से ईरान की शक्ति बढ़ेगी और उसकी प्रतिभाएँ जागृत होंगी जो अब तक गरीबी, ज़रूरत और कमजोरी के कारण निष्क्रिय रही हैं। इस रेल मार्ग की सहायता से भारत को यूरोपीय माल निर्यात करने से ईरान का महत्व और मूल्य बढ़ जाएगा और सैन्य दृष्टि से ईरान के लिए भारत पर हमला करना अधिक आसान हो जाएगा। अतः इस रेलवे का निर्माण करके हम सभ्य राष्ट्र इंग्लैंड के हितों को एक अर्ध बर्बर राज्य के हाथ के खिलौने में बदल देंगे। अक्षमता, गरीबी और बर्बरता भारत के पश्चिम में स्थित सभी देशों की विशेषताएं हैं और इस स्थिति ने इंग्लैंड को भारत में शक्तिशाली बना दिया है। इन देशों में तबाही और गरीबी को खत्म करना हमारा दायित्व नहीं है। ठीक ऐसे ही विचारों के कारण ब्रिटिश राजदूत अमीर कबीर के दारुल फनून स्कूल के निर्माण से सहमत नहीं थे, जहां चिकित्सा, इंजीनियरिंग, भौतिकी, रसायन विज्ञान और सामरिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। लेकिन वो अमीर कबीर के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते थे। अंततः उन्होंने अमीर कबीर को स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापकों को भर्ती करने के लिए मनाने का निर्णय लिया। अमीर कबीर नहीं चाहते थे कि ये स्कूल भवन देश में रूसी और ब्रिटिश प्रभाव को और बढ़ाने का प्लेटफॉर्म बन जाए, इसीलिए उन्होंने इन देशों के किसी भी अध्यापक को नौकरी पर नहीं रखने का निर्णय लिया था। उन्होंने अपने एक सहायक को दारुल फनून के लिए प्रोफेसरों को खोजने और उन्हें ईरान लाने के लिए ऑस्ट्रिया भेजा। ऐसे प्रोफेसर जिनसे अमीर कबीर कभी नहीं मिल सके। अमीर कबीर से द्वेष रखने वाले राजकुमारों और दरबारियों ने उनके खिलाफ ब्रिटिश और रूसी राजदूतों से हाथ मिला लिया। उन्होंने युवा राजा को यह विश्वास दिलाया कि अमीर कबीर उसके छोटे भाई को गद्दी पर बिठाना चाहता है। अनुभवहीन शाह ने षड्यंत्रकारियों के बहकावे में आकर अमीर कबीर को बर्खास्त कर दिया और उनके स्थान पर एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जो ब्रिटिश दूतावास का सदस्य था, मिर्जा आगा खान नूरी। इस घटना के बाद रूसियों को लगा कि अंग्रेजों ने अपना प्रभाव बढ़ा लिया है, इसलिए उन्होंने अपना सामरिक रुख बदलकर अमीर कबीर का समर्थन शुरू कर दिया। रूस द्वारा अमीर कबीर का खुला समर्थन देखकर शाह को विश्वास हो गया कि अमीर कबीर उसकी राजशाही को उखाड़ फेंकना चाहते थे। उसने अमीर कबीर को काशान के फीन क्षेत्र में निर्वासित कर दिया। अमीर कबीर के दुश्मनों ने शाह से उनकी हत्या का आदेश जारी कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन शाह इसके लिए कभी तैयार नहीं हुआ। दारुल फुनून के ऑस्ट्रियाई प्रोफेसर अमीर कबीर की बर्खास्तगी के कुछ समय बाद तेहरान पहुंचे और उन्होंने इस संस्था में पढ़ाना शुरू कर दिया। जब अमीर कबीर पद से हट चुके थे तो ब्रिटिश राजदूत ने शाह को ऑस्ट्रियाई प्रोफेसरों को उनके देश वापस भेजने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, लेकिन ऑस्ट्रियाई राजा के प्रति शर्मिंदगी के कारण नासिरुद्दीन शाह ने ब्रिटिश राजदूत के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। कुछ समय बाद इनमें से तीन शिक्षकों की एक के बाद एक संदिग्ध मौत हो गई। जैती गणित और सैन्य विज्ञान के शिक्षक थे। उनका शव उनके कमरे में मिला था। जाहिरी तौर पर अंगीठी के कोयलों से निकलने वाले धुएं से उनका दम घुटा था। करेंटा खनन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। उनकी मौत की खबर अचानक पूरे शहर में फैल गई। राजा के फ्रांसीसी चिकित्सक क्लोक्रेट ने, कि जो संभवतः चिकित्सा पढ़ाते थे, एक रात अपने नौकर से पानी मांगा। नौकर ने पानी में जहर मिलाकर दे दिया। जैसे ही उन्होंने पानी पिया उन्हें एहसास हो गया कि उसमें जहर है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और उनकी तुरंत मौत हो गई। दारुल फुनून में हुई संदिग्ध मौतों का रहस्य कभी नहीं सुलझा, लेकिन कुछ समय बाद ईरान में ब्रिटिश जासूसों में से एक मीर अली नकी फराहानी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री से एक बहुत महंगा उपहार मिला, एक बहुत ही मूल्यवान हीरे की जड़ी अंगूठी। कोई नहीं जानता था कि मीर अली नकी ने इंग्लैंड की क्या सेवा की थी जिसके बदले में उसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद और इतना कीमती उपहार मिला था। अब मीर अली नकी पहले से भी अधिक उत्साह के साथ ब्रिटिश सरकार की सेवा करने के लिए तैयार थे। ईरान में दारुल फुनून की स्थापना से लगभग 30 वर्ष पहले से अंग्रेज भारत में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने हर चीज़ पर कर लगा दिया था, यहाँ तक कि स्कूलों के लिए आवंटित ज़मीनों पर भी। इन ज़मीनों से प्राप्त आय का उपयोग भारतीय बच्चों और युवाओं को शिक्षित करने के लिए किया जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इन ज़मीनों पर भी कर लगा दिया। अगर कोई स्कूल ये कर नहीं चुका पाता था तो उसे उस ज़मीन से हाथ धोना पड़ता था। अंग्रेज़ों द्वारा भूमि पर कब्जा करने के बाद स्कूल के पास खर्च करने के लिए धन नहीं बचता था, इसलिए स्कूल बंद कर दिया जाता था। इसी तरह अंग्रेज़ों ने बड़ी संख्या में भारतीय स्कूलों को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया और बड़ी संख्या में भारतीय बच्चों और युवाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया। उन्होंने पुस्तकों को भारतीयों तक पहुँचने से रोका और भारतीयों को प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग करने की अनुमति देने में कई साल लगा दिए। धीरे धीरे युवा भारतीयों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें अपने ही शहर और देश में काम करने के लिए अंग्रेजी बोलना और लिखना पड़ती थी। इस तरह से अंग्रेज चाहते थे कि युवाओं का भारत की मूल संस्कृति से जुड़ाव खत्म हो जाए। ईरान में मिशनरी स्कूल खुल गए थे जहां बच्चों और युवाओं को पादरी पढ़ाते थे। मोहम्मद शाह काजार के ज़माने में मिशनरीज को स्कूलों के निर्माण और प्रचार की अनुमति दी गई थी। शुरुआत में ये स्कूल सिर्फ ईरान के उत्तर पश्चिम में स्थित एक शहर अज़रबैजान में सक्रिय थे, लेकिन नासिरुद्दीन शाह के दौर में इनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई और ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के इलाकों तक सीमित नहीं रहे बल्कि देश के दूसरे बड़े शहरों में भी मिशनरी स्कूल खुल गए। इंग्लैंड और फ्रांस जैसे यूरोपीय देश जो ईरान में अपने राजनीतिक और आर्थिक हित साधना चाहते थे, इन स्कूलों का समर्थन कर रहे थे। दारुल फुनून पहली आधुनिक संस्था या पहली यूनिवर्सिटी थी जिसे सरकार ने स्थापित किया था। सरकार द्वारा प्रयास किया गया था कि इस यूनिवर्सिटी में दूसरे देशों का प्रभाव और हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हालांकि अंग्रेज़ों ने इसके निर्माण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया था, लेकिन जब वो सफल नहीं हुए तो उसे अपने प्रभाव में लेने का प्रयास करने लगे। दारुल फुनून का उद्घाटन रविवार 5 रबीउल अव्वल 1268 हिजरी को हुआ। इसके उद्घाटन में नासिरुद्दीन शाह और प्रधानमंत्री आगा खान नूरी ने भाग लिया। शुरू में इसमें 30 छात्र थे, लेकिन इसकी स्थापना के दो हफ्ते बाद ही शाह के आदेश पर इसके संस्थापक और ईरान के योग्य मंत्री अमीर कबीर की हत्या कर दी गई। औपनिवेशिक सरकारें अभी भी अन्य देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए विशेष स्कूलों और पाठ्यक्रमों से लाभ उठाती हैं। इन दिनों इराक में IYLEP इराकी यंग लीडर्स एक्सचेंज प्रोग्राम नामक कार्यक्रम के कार्यान्वयन को देखा जा सकता है। ये विशेष रूप से इराकी बच्चों के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम है, जिसे बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास द्वारा डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन से इराकी अधिकारी और विशेषज्ञ चिंतित हैं। उन्होंने कार्यक्रम के प्रतिभागियों के बीच नैतिक मूल्यों के पतन के बारे में चेतावनी दी है और कार्यक्रम के उद्देश्यों पर सवाल खड़े किए हैं। सामाजिक विज्ञान शोधकर्ता मोहम्मद अलजैदी का इस संबंध में कहना है, इराक पर अमेरिकी कब्जे के बाद से उनका सबसे बड़ा लक्ष्य इराक के सांस्कृतिक मूल्यों, नैतिकता और परंपराओं को नष्ट करना है। ये किसी भी देश की शक्ति की आधारशिला है। इस शोधकर्ता का मानना है कि अमेरिकी दूतावास ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से इराकी लोगों की पहचान को नष्ट कर रहा है। दोस्तों, जो पॉडकास्ट आपने सुना वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया था। अगर आप दिलचस्प विषयों पर इसी तरह और भी पॉडकास्ट सुनना और देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi को विजिट कर सकते हैं।